देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। ईशावास्य उपनिषद या ईशु उपनिषद की चर्चा में आज हम लेंगे 12th मंत्र। मेरे साथ मिल करके बोलिए, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोयौ संभूत्यामृतः। पिछले संडेज में हमने सुना विद्या और अविद्या के बारे में। विद्या मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और अविद्या मतलब मैटेरियल नॉलेज, मैटेरियल एक्सपीरियंस, मैटेरियल लाइफ। और कंक्लूड किया था कि दोनों लाइफ में जरूरी है, दोनों को जो लाइफ में लाता है, बैलेंस्ड रखता है, वही स्मार्ट होता है, वही आगे जाता है। जो दोनों में से किसी एक चीज में भी एक्सक्लूसिवली चिपक जाता है वो अंधेरे में गिरता है, दुख भोगता है, वो स्पिरिचुअलिटी हो या मैटेरियलिटी हो। दोनों में से किसी एक को चुनो, दोनों खतरनाक होते हैं। अविद्या के बारे में हम डिटेल में जाना कि कितनी जरूरी है लाइफ में, मैटेरियल लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, खाना बनाना हो, घर गृहस्थी हो, एवरीथिंग इज ऑल अकाउंट ऑफ मैटेरियल लाइफ। तो जो लोग मैटेरियल लाइफ में भी रहते हैं वो भी दो तरह के लोग होते हैं। आज स्पेशली उन्हीं की चर्चा करेंगे। इसका नाम है संभूति और असंभूति, तीन मंत्रों का एक कॉम्बिनेशन है। उसकी स्टाइल सेम है। जो लोग अनमैनिफेस्टेड नेचर में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर देते हैं, वो अंधेरे में मतलब दुख में लास्ट आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे उनको दुख ही मिलता है। और जो लोग मैनिफेस्टेड नेचर में पड़े रहते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, वो उससे गहरे अंधेरे में गिरे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, द वर्ड इट इज यूज्ड एट उपासते। उपासना मीन सिटिंग नियर, किसी के पास बैठना। हम जो पूजा भक्ति वगैरह करते हैं उसे भी प्राचीन शब्द में, जिसको आजकल आप भक्ति कहते हो, डिवोशन कहते हो, प्राचीन भाषा में, ध्यान रखिए, भक्ति वर्ड इज नॉट ए वेरी एंशियंट वर्ड। जो भक्ति के लिए जो वर्ड प्राचीन काल में यूज होता था वो था उपासना, ट्राइंग टू बी क्लोज टू समवन। जब आप ईश्वर के, प्रभु के क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जो भी एफर्ट्स लगाते हैं वो उपासना है। पर उपासना का लिटरेरी मीनिंग ऐसा नहीं है, वो है कि पास होना। आप किसी के भी पास हो सकते हैं, आप खाने पीने की भी उपासना कर सकते हैं। 24 घंटे आपको यही सोचता है लंच में क्या खाना है, लंच हो गया तो स्नैक्स में क्या लेना है, स्नैक्स हो गया जी बताओ रात का क्या जुगाड़ है, ये भी उपासना है। उपासना ये भी हो सकता है कि पैसे की उपासना, इतना कमाया तो शाम को कितना बढ़ेगा, सुबह तक, अगले दिन की सुबह तक अकाउंट में कितना आएगा, क्वार्टर तक कितना आएगा। तो जहां हम अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करते हैं वो सब उपासना है। और ये ह्यूमन बींग की जो माइंड है वो उसका नेचर है। ऐसा नहीं कि हम कोई डिलिबरेटली करते हैं, या हम खराब है करते हैं, या अच्छा है करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी माइंड को कोई ना कोई चाहिए जहां से, जहां वो अपने आप को क्लोज करे। फिजिकली आप क्लोज हां नहीं है, इट डजेंट मैटर। मेंटली आप मेंटली कभी भी अकेले रह नहीं रह सकते। हाँ, जो अपने आप को उस तरह के बना रखे हैं, रेगुलेटेड बना रखे हैं, उनकी बात अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन और वुमेन। तो माइंड कभी भी अकेले रह ही नहीं सकता, उसको कोई चाहिए जिसके साथ उपासना करे। वो उपासना आप पैसे के साथ करें, फैमिली के साथ करें, इंद्रियों के सुख के साथ करें, ईश्वर के साथ करें, बॉडी के साथ करें, आत्मा के साथ करें, मिठाई के साथ करें, क्राइम के साथ करें, दूसरों की भलाई के साथ करें, किसी के साथ भी करें, एवरी मोमेंट योर माइंड नीड समथिंग और बींग टू बी क्लोज विद दैट। और प्रॉब्लम यह हमारे ऊपर है, हमारी उपासना, हमारा क्लोजनेस कहां पर है। अगर फिलहाल आप ईश्वर के साथ अपने आप को क्लोज फील करते हैं, नेचुरली आप दुनिया से दूर हैं। अगर आप दुनिया के साथ क्लोज फील करते हैं तो आप ईश्वर से दूर हैं। आप बहुत ज्यादा फैमिली से अटैच्ड हैं, नेचुरली आप प्रोफेशनल लाइफ में शायद इतना ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि आपको घर आने की जल्दी रहती है, बच्चे परिवार के लिए टाइम देना जल्दी रहता है। अगर आप पैसे के लिए, पावर के लिए, पोस्ट के लिए आपकी उपासना ज्यादा है, आप फैमिली को इग्नोर करेंगे, फ्रेंड सर्कल को इग्नोर करेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें इग्नोर करेंगे, अपनी खान पान को इग्नोर करेंगे, हेल्थ को इग्नोर करेंगे। आप अपने हेल्थ के साथ उपासना करते हैं तो नेचुरली आप खाने पीने को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। पर एवरी मोमेंट हमारा माइंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो उपासना करता ही रहता है। आप शरीर से अटैच्ड हो जाएं तो माइंड आत्मा से दूर भाग जाएंगे, आत्मा से क्लोज हो जाएं तो बॉडी से छूट जाएंगे। छूटने का मतलब डरिए मत कि बॉडी छूट जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, जिंदा बिल्कुल रहेंगे, मतलब बॉडी से अटैचमेंट छूट जाएगा। बहुत सारे लोग डरते हैं जब हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करते हैं, कहते हैं फिर बच्चों का हमारा क्या होगा। मतलब अटैचमेंट के कारण बच्चे या पति पत्नी थोड़े ही प्यार करते हैं आप, प्यार तो एक बड़ा डिवाइन चीज है। आप डिटैच्ड होकर भी बच्चों का उतने ही ख्याल रख सकते हैं, उतने ही प्यार कर सकते हैं, अपने स्पाउस को भी उतने ही प्यार कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्यार एक अलग चीज है, पर अटैचमेंट एक अलग चीज है। आप प्यार ना कर भी अटैच्ड हो जाते हैं। आपको मजेदार बात बताएं, हम सब सबसे ज्यादा अटैच किससे होते हैं? अपने दुश्मनों से, जिससे हम नफरत करते हैं, जिससे हम पसंद नहीं करते हैं। आप नोट करिए, आपकी 24 घंटे के दिन और रात में सबसे ज्यादा उन लोगों के बारे में आप टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते हैं, जिनसे आप पसंद नहीं करते। अगर वो आपको दिख गया, कुछ हो गया, आपने उसको देख लिया, सुन लिया, दिन भर वही चलता रहता है। आप उन चीज लोगों को भूल जाते हैं जो आपके क्लोज हैं, फ्रेंड हैं। ये मजेदार बात है जी। आप फिजिकली आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, स्पाउस के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, माइंड में वो चल रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, वो आज मिल गया था वहां पार्टी में, उसने ऐसी कमेंट कर दिया, देखा। किसको बोले? हस्बैंड को बोले, वो कहेगा चुप करो ना, 24 घंटे वही बोलते रहते हो। वाइफ को भी बोले चुप करो ना, घर की ऑफिस की बात घर में ला करके बैठे रहते हो। बच्चे तो सुनने को तैयार नहीं, किसको सुना है? अंदर अंदर चलता रहता है। तो उपासना ज्यादा तो नेगेटिव चीजों के साथ होता ही रहता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस क्योंकि हम उसे अटैच्ड हैं। प्यार से सिर्फ अटैच नहीं होते, नफरत से भी अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड लव इज समथिंग डिफरेंट। इसी तरह आप अगर ईश्वरीय चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो आपकी छोटी मोटी संसारिक चीजों में आपको कोई मजा नहीं आता है। आप अगर दुनिया की चीजों को एंजॉय करते हैं, आप पावर को एंजॉय करते हैं, पॉलिटिक्स को एंजॉय करते हैं, तो फिर आपको वो सब चीजें बेकार लगेगा। मंदिर जाने वाले लोगों को लगता है ये जो क्लब जाते हैं, शराब पीते हैं, बड़े बेकार के लोग हैं। उनके बारे में उनका काफी नेगेटिव थॉट्स हैं। और यकीन मानिए, क्लब जाने वाले, ड्रग लेने वाले, शराब पीने वालों का आपके बारे में भी सिंपल यही ख्याल है, बड़े स्टूपिड टाइप के लोग हैं, वेस्टिंग देयर लाइफ, क्या करते रहते हैं। मत सोचिए कि आप बड़े अपने आप को एडवांस सोचते हैं, स्मार्ट सोचते हैं और उनको मूर्ख समझते हैं, वो भी आपको वही समझता है। क्योंकि जहां से आप अटैच्ड हैं उसी को आप एंजॉय करते हैं, बाकी दुनिया आपको मूर्ख लगता है। पर जो बॉटम लाइन है कि आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बैठे ही रहते हैं, अटैच्ड उपासना करते ही रहते हैं। मंत्र कहता है जो प्रकृति के साथ, मतलब सेंसेस का कनेक्शन होता है इंद्रियों का नेचर से, जो प्रकृति में एंजॉय करता है, इंद्रियों के साथ ज्यादा अटैच्ड हैं, इंद्रियों की उपासना करता है, वो अंधेरे में गिरते हैं। पहले इसी को समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पर। जब आप खाना को एंजॉय करते हो तो आप अपने जीव इंद्रिय के साथ क्लोज हो, नियर हो, उस समय आपको ना सुनने देखने बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप खाने को एंजॉय कर रहे हो तो खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप और कहीं एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय आप बुरे चीजों में भी करते हो, अच्छी चीज में भी करते हो, दुख में भी आप एंजॉय करते हो। बहुत सारे लोग तो दुख छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, दुख बना रहे तो उन वो उसी में वो अपने आप को एंजॉय करते हैं, बताते हैं मैं बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, कुछ सोल्यूशन दो ना, वो लेने की तैयार भी नहीं है, क्योंकि दुख इज नाउ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे एंजॉय टू बी सैड। इंद्रियों को जो एंजॉय करता है, जो इंद्रियों की उपासना करता है, उसके लिए एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज यू हैव टू बी ब्लाइंड टू एंजॉय योर सेंसेस, ब्लाइंड मेंटली, अंधेरे में। अंधेरा का मतलब जहां आपका थॉट प्रोसेस काम करना बंद कर दे, जहां आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दे। आपको मना है पर्टिकुलर चीज नहीं खाना, मान लीजिए आजकल यूनिवर्सल चीज है मीठा कम खाना, ये सबको पता है। पर क्या है कि मीठा नहीं खाना तो हम चीनी नहीं खाते हैं, चाय में ने चीनी नहीं डाला, गुड़ नहीं डाला, घर में ये छोटी मोटी मिठाइयां भी इग्नोर कर देते हैं, जलेबी नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। पर कोई एक दिन पार्टी में या घर में कुछ वो मिठाई आ गई जो बड़ा पसंद है, आप ना ना करते करते आधा लड्डू खा ही लिया, आप अपने आधा लड्डू खाते ही धीरे 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 आप अपने आप की जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है वो लॉक होता जाएगा और आपकी खाने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अगर खाने की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो, वो तभी होता है जब आप अपने मेंटल पावर को लॉक करते हो। लॉक करने का मतलब अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम भूल गए कि इससे मुझे कितना नुकसान होने वाला है। दैट इज डार्कनेस, वही है अंधेरा। जब आप कुछ सुनने में एंजॉय करने लगते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, बच्चे टीवी देखने में एंजॉय करते हैं, आईपैड लेकर के टैबलेट लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पता नहीं होता, खास करके जो मिडिल स्कूल में हाई स्कूल में है उनको पता होता है कि लाइफ में ये कितना नुकसान। आप तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को, केजी के बच्चे को भी पूछ लो कि टीवी देखने में क्या फायदा है कि नुकसान है, वो आपको आपसे ज्यादा गिना देगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये आंखें खराब होंगी, वो आपकी मेमोरी लॉस होगा, आपको भी पता नहीं होगा, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है या छोटे छोटे चिल्ड्रेन है वो आपको बता देंगे टीवी देखने में, स्क्रीन में बैठने में कितना नुकसान होता है, वो आपको समझा देंगे, आपसे ज्यादा जानते हैं। पर आपसे एवरी डे दे फाइट करते रहते हैं कि मुझे और देखना है, और देखना है।
जब आपको बच्चे को टीवी देखने की मजा आता है देन ही हैज टू बी ब्लाइंड, क्योंकि जो उसको पता है जब तक वो उसको भूलेगा नहीं वो काम वो नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हम अनकंसस होंगे उतना सेंसुअल एंजॉयमेंट ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ही आप कंसस होते जाएंगे, कॉन्सियस मतलब आपकी ज्ञान बना रहेगा, डार्कनेस में कम जाएंगे, उतना हमारा सेंसुअल एंजॉयमेंट जिसको आप भोग कहते हैं वो कम होता जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है, इसीलिए जब लोग बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक होते हैं तो उसका कंडीशन होता है, जब आप जितने मैटेरियलिस्टिक होंगे उसके साथ एक कंडीशन जुड़ता है कि आप अल्कोहल या ड्रग या ऐसा कुछ आप लेने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए बंद करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कम करता है, आपकी गिल्टी फीलिंग को कम करेगा, जिससे कि आप जो एंजॉय करना चाहते हो बढ़िया एंजॉय कर सकते हो। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी बुरे लोग होते हैं, उन सबके साथ कोई ना कोई एडिक्शन होता है। वो एडिक्शन इसीलिए कि वही अगर आप कॉन्शियस होकर के कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो गलत है, जब तक आप अनकॉन्शियस ना हो, ब्लाइंड ना हो, आपसे गलत काम होगा ही नहीं। जब मैं कहता हूं गलत काम, इसका सिर्फ यही अर्थ नहीं कि आप चोरी करते हैं या किसी की खून करते हैं या किसी को लूटते हैं, इवन आप अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, वो भी गलत काम है ना, क्योंकि आप अपने आप को ट्रबल में डालते हैं। तो जब भी हम गलत काम करते हैं उसके लिए जो हमें जरूरी है कि हम अनकॉन्शियस बने, हमारी जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो गायत्री मंत्र में आप प्रार्थना करते हैं बुद्धि को बढ़ाओ, वो बुद्धि को कमजोर करना जरूरी है, वो विजडम को वीक करना जरूरी है, उसके बिना आप सेंसुअल एंजॉयमेंट में जा ही नहीं सकते, डूब नहीं सकते, उपासना कर ही नहीं सकते, ये जरूरी है। पर देवियों सज्जनों, इससे जो मजेदार चीज है वो है ईगो की उपासना करना। एक आदमी खाना एंजॉय करता है, बहुत खाना खाता है, हर तरह के खाना खाता है। एक आदमी कपड़े पहनना पसंद करता है, एक आदमी नाचना पसंद करता है, गाना पसंद करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहता है, कोई ना कोई सेंस उसको सेटिस्फाइड होता है। पर आप कोई जॉब करते हैं, जितना आपको पैसा मिलता है उससे आपके घर चलाने के लिए काफी है, फ्यूचर में सेव करने के लिए काफी है, मान लीजिए काफी है, जो भी आपकी लिमिटेशन हो कि मुझे इतना हो तो काफी है, क्या आपको लगता है उतना मिलने के बाद लोग आगे बढ़ना बंद कर देते हैं? जो ऑफिसों में जो पावर की पॉलिटिक्स होती है, आगे बढ़ने की पॉलिटिक्स होती है, ये जो पॉलिटिशियन देश के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पाने के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर में ये जो गला काट फाइटिंग होती है प्रमोशन के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्या वो इसीलिए होता है कि उनको इतना पैसा मिले कि उनका घर गृहस्थी चले, सेंस के एंजॉयमेंट के लिए जो सुख सुविधाएं साधन चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो सब मिले इसीलिए फाइटिंग होती है? नहीं, हमारे आज अतुल जी दिख नहीं रहे हैं, वो मुझे दो तीन बार एक चीज बताते थे, बोले एक सर्वे है, किसी ने बोला कि इस प्लैनेट में जिसके पास हाफ मिलियन डॉलर है ही इज मोर देन ए रिच पर्सन। और मजेदार बात है, यूएसए में और अगर हम अपने इंडियन कम्युनिटी में लें तो आई थिंक मोर देन 90% लोग और मोर देन हाफ मिलियन जिनके पास है, उससे ज्यादा जो पैसा आपके पास होता है वो आपके काम का नहीं होता है। वो किसके लिए होता है? ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो नीड को फुलफिल करने के लिए नहीं। मैक्सिमम $500,000 है, इट्स मोर देन एनफ आपकी लाइफ की सारी जरूरतें पूरा करने के लिए। रेस्ट अब आगे जो भी आपकी इच्छा है कमाने का वो सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। उस पैसे से ना आपकी खाने पीने का खर्च निकलने वाला है, आपकी शरीर के किसी भी चीजों की जरूरत को पूरा करने की जरूरत नहीं है सिवाय ईगो को। जो सेंसेस के पीछे, इंद्रियों के सुख के पीछे पड़े रहते हैं वो बड़े नेचुरल होते हैं। उनको आप गाली देना चाहें कह सकते हैं जानवर हैं, फाइन। क्यों, जानवर भी क्या करते हैं, एनिमल्स होते हैं। उनका लिमिटेशन कहां तक है? अपने सेंसेस को फुल कर। भूख लग रहा है तो शेर को भूख लग रहा है वो जाएगा शिकार खोजेगा, जो भी मिला वो वायलेंट भी होगा, आराम से मिल जाए ठीक है। कब तक? जब तक उसका पेट भर ना जाए। पेट भर गया, अब अगर उसके शिकार उसके आसपास घूमे भी ना, नाक के पास भी घूमे ना, वो खरगोश अगर भरा हुआ शेर के पेट भरा हुआ शेर के नाक के पास घूमे ना, तब भी शेर उसको नहीं काटने वाला जब तक उसको दोबारा भूख ना हो। आप कह सकते हैं जो लोग सिर्फ रोटी कपड़े के लिए पीछे पड़े रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, भारत में पॉलिटिकल स्लोगन होता है, रोटी कपड़े मकान के पीछे पड़ा रहता है, वो जस्ट लाइक एनिमल्स। हम तो उससे बेटर है, ह्यूमन बींग है। आप उसको एनिमल कह सकते हैं पर वो डेंजरियस नहीं होते। आपको पता है दुनिया में जितने भी कंफ्लिक्ट है, जहां करोड़ों लोग मरते हैं, मारे जाते हैं, यूज्ड होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं, उसका रीजन ये नहीं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उनके कारण। ये सब होता है उनके कारण जिनको ईगो, जिनका ईगो नीड से बड़ा है, पॉलिटिकल लीडर से हैं। वो नेपोलियन हो, वो स्टालिन हो, वो नाजी हो, या दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजे हो, आज के तारीख में बड़े बड़े देश की लीडर हो, कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर हो, जो टेररिज्म भी आज होता है वो कोई नीड के कारण नहीं है कि हमारी जरूरत है, हमें लोगों ने टॉर्चर किया, ना खाने को मिला ना पीने को मिला, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे। नहीं, ईगो, मेरा रिलीजन तुमसे बड़ा है, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हें मरना पड़ेगा, दैट्स इट। जो लोग सेंसेस के पीछे पड़े रहते हैं दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, बट जो उससे आगे ईगो के पीछे पड़े रहते हैं दे आर ग्रेटर देन डेविल्स। हमारे से देवियों सज्जनों, अच्छे से अच्छे आदमी, कमन से कमन आदमी के जीवन में जितने भी बुरे काम होते हैं, हमारे से जितने भी बुरे काम होते हैं, ये मोस्ट ऑफ जो हमारा बुरा काम होता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वी नीड समथिंग, जस्ट टू सेटिस्फाई आवर ईगो। ईगो ज्यादा डेविल होता है। तो इसलिए जो सेंसेस को उपासना करते हैं, इंद्रियों की उपासना करते हैं, वो बड़ा नेचुरल है, दे क्लोज टू नेचर, एनिमल्स के बराबर आ सकते हैं। पर जो ईगो को सेटिस्फाई करते हैं वो कुछ दूसरे लेवल पर आते हैं, वो ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरते हैं। पर प्रॉब्लम है कि ये जो ईगो इतना शटल होता है कि हम बड़े इजीली उन लोगों को जज करते हैं जो सेंसेस के पीछे पड़े रहते हैं, इंद्रिय सुख के पीछे। देखो कितना भूखा है, भूखड़ है, देखो कितना कामुक है, देखो कितना जो भी। पर ईगो वालों को ऑब्जर्व करना, उनको नोटिस करना मुश्किल होता है, खुद ही मुश्किल होता है खुद को कि मेरे अंदर कितने ईगो आ चुके हैं। ये ऐसा एक जर्म है जो अब हमारे अंदर घुसता है और ऐसे तरीके से घुसता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि मेरे अंदर कब ईगो घुस गया है। एक आधा एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। आप कहेंगे मेरे पास मुझे दूसरों से बड़ा बनना है, अपने रिलेटिव से, नेबरहुड से, फ्रेंड सर्कल से ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसी गाड़ी है मुझसे उससे महंगी गाड़ी लेना है, नेचुरली टू सेटिस्फाई माई ईगो। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा घर है मुझे उससे बड़ा घर लेना है, नेचुरली टू सेटिस्फाई माई ईगो। मेरे फ्रेंड सर्कल में ये ऐसे कपड़े पहनते हैं मुझसे उसे बेटर कपड़ा पहनना है, नेचुरली टू सेटिस्फाई माई ईगो। ये तो दिखता है, पर ईगो सिर्फ यही नहीं दिखता, ईगो की इतनी सटलिटी है, इतना सूक्ष्मता है कि लोग मेरे पास कुछ नहीं है इसका भी ईगो पालते हैं। बहुत लोग मिलेंगे जो बड़े अकड़ के रहते हैं, आप इनको ग्रीट भी करो तो भी उनको लगता है ये ग्रीट करने लायक ही नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं से करेंगे जो उनके लेवल के हो, बड़े बड़े लोग हो जिनको वो बड़े समझते हैं, बाकियों को इग्नोर करते हैं। आपको बुरा लगता होगा कि आदमी कितना घमंडी है, कितना इगोइस्टिक है, पर दूसरे आदमी को कभी आपको लगता ही नहीं है कि वो इगोइस्टिक होगा। दूसरा कहता है जी मैं तो, आप बड़े हो, मैं तो क्या तुम्हारे धूल के बराबर हूं। यकीन मानिए वो कहता है मैं तुम्हारे धूल का बराबर हूं, अगर आपने कह दिया आपसे भी एक छोटा कोई है तो उसको बुरा लगेगा। मैं सबसे छोटा होने को तैयार हूं, यकीन मानो छोटा मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर क्या है? सबसे छोटा, मतलब फिर यह नहीं बोलना कि मेरे से भी कोई छोटा है। देखो वो ईगो लेकर पालता है, कितना अकड़ता है, मैं देखो कितना सरेंडर कर रखा हूं, मुझे बोलो सबके चरणों में गिर सकता हूं। पर यह नहीं बोलना कि तुम्हारे जैसे और भी एक आदमी है जो चरणों में गिरता रहता है, फिर खत्म मेरा ईगो, फिर मैं ऑफेंडेड हो गया। मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं कैसे ईगो बड़ा शटल होता है, बैकडोर से घुसता है, आपको पता ही नहीं चलता। एक साधु जी थे, असाधु सन्यासी, उनका नियम था, बड़े ज्ञानी थे, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, अपना डिसाइपल नहीं बनाते थे, अकेले रहते थे जंगल में, किसी को नहीं बनाते थे। एक ट्रैवलर साधु, जो परिव्राजक जिसको बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं, एक साधु आया, परिव्राजक साधु, दूसरा साधु उस जंगल में रहने वाले साधु के पास पहुंचा। वो घूमता रहता है देशों में। बोला महाराज आप सचमुच महान हो, मैंने बहुत साधु देखे जो शिष्य बनाते हैं और उनको बड़ा अकड़ है, मेरे पास मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 1,00,000 शिष्य हैं, मेरे 5,00,000 शिष्य हैं, मेरे 10,00,000 शिष्य हैं, अकड़ते हैं। पर साधु को कोई शिष्य पालना होता है? आप रियल साधु हो, कोई शिष्य नहीं, कुछ नहीं। साधु जी के मुंह पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आया, क्या बात करते हो, मुझे कंपेयर करते हो उस आदमी से? अरे वो नाम का साधु है, मार्केटिंग करता है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोकेशना समझते हैं, लोकेशना, नेम और फेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। पर महाराज एक बात बताऊं, मैं एक दूसरे गांव में गया था जंगल में, वहां भी बिल्कुल आपके जैसा एक साधु है, उसका भी कोई शिष्य नहीं है। देवियों सज्जनों,
साधु जी की स्माइलिंग धीरे धीरे फेड होता गया, मुंह चिड़चिड़ा हो गया।
यार सबसे ज्यादा त्याग तो मैंने किया, मेरे पास कुछ नहीं है इस बात के लिए मैं गर्वित था। तुम कह रहे हो और भी एक आदमी है जो मेरे से भी कम कुछ भी नहीं है।
किसी को सब कुछ होने का गर्व है, किसी को सब कुछ त्यागने का भी गर्व है। ये बड़ा शटल है। बहुत बार हम कर्म थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि ईश्वर के व्यवस्था में आप फिजिकली क्या करते हो वो कम मैटर करता है, उसके बैकग्राउंड में आपका क्या चल रहा है माइंड में वो ज्यादा मैटर करता है। आप 10 लोगों को कल लाइए जो चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं, पर अगर ईश्वर की व्यवस्था में उनको कोई अवार्ड या रिवार्ड मिलता हो, 10ों का अलग अलग होगा। 10ों एक ही टाइप की चैरिटी करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, दुख में साथ देते हैं, अपना सारी संपत्ति धन कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, पर रिवार्ड्स अलग मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हो सकता है कि कोई चैरिटी करता है इसीलिए, क्योंकि इससे उसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, लोग उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, वन टाइप ऑफ इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन हो सकता है कि मैं किसी पर चैरिटी करूं, उस पर मैं अपना एहसान बनाए रखूं, आगे जाकर के वो मेरा काम आएगा, ये भी सेकेंड टाइप ऑफ इंटेंशन। थर्ड टाइप ऑफ इंटेंशन हो सकता है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति नेचुरली बड़ा काइंड हार्टेड है, किसी को भी देखता है, भला करता है, उसको पता चला ये बेचारा नीडी है तो वो हेल्प कर बैठा, दैट्स इट। कोई चौथा इंटेंशन भी होगा कि ये मेरा रिलेटिव है, जान पहचान है, दुखी है, परेशान है, मैं कभी उसको हेल्प करूं तो इसीलिए हेल्प करता हूं, वहां एक रिलेशनशिप की कंडीशन है। कोई दूसरा इंटेंशन होगा कि भला करने से, ज्यादातर ये रिलीजियस लोग करते हैं कि पुण्य मिलता है, मरने के बाद कुछ पुण्य वगैरह मिलेगा, इस क्योंकि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, इधर उधर सुनते हैं, कुछ अगले जन्म के लिए भी तो सेविंग करना है ना, हमें तो पता चला ये अकाउंट में जो पैसा है वो सब वहां नहीं जाने वाला, नहीं तो इसी को थोड़ा और बढ़ा के रख देते, मरने के बाद वहां काम आ जाएगा, पता चला ये सब काम नहीं आने वाला, और हमने सुना है कि वहां काम आता है आपका पुण्य, तो इसलिए अच्छा काम करते हैं, मतलब अगले जन्म के लिए अकाउंट भी बना के रखें। हजारों इंटेंशन हो सकता है, काम एक ही है, चैरिटी है, अच्छा काम है, इसलिए रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। देवियों सज्जनों, इसलिए ईगो कहां से हमारे अंदर घुसता है, अच्छे काम से भी आता है, बुरे काम से भी आता है। मुझे एक सज्जन मिले, एक महिला मिली, वो सोशल सर्विस बहुत करती हैं, बहुत सारे सोशल सर्विस एनजीओ से इन्वॉल्व्ड हैं, अच्छा काम करती है। एक दिन मुझे बोला कि हमने सुना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा, और देखो हम तो लोगों की सेवा करते हैं, हमें क्या जरूरत है ये पूजा पाठ मेडिटेशन भक्ति डिवोशन स्पिरिचुअलिटी ये सब करने की, हम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है ही, क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं, और ये जो सो पूजा पाठ करते हैं तो बेकार के लोग हैं, किसी काम के नहीं है। आपको लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ईगो नाक तक भरा पड़ा है, इतना ज्यादा ईगो लोगे तो स्वर्ग तो छोड़िए, ईश्वर तो छोड़िए, उसके दरवाजे के आसपास भी जगह नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सेवा के पीछे अगर ईगो जुड़ जाए तो वो अलग चीज है। नेक्स्ट टाइम, आज थोड़ा हमारे एक दूसरे कार्यक्रम है जो भारत में हमारे बहुत सारे सैनिकों को मारा गया, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा है, तो मैं थोड़ा आज जल्दी समाप्त करेंगे।
हम आगे जानेंगे जो जो दोज हु वर्शिप सेंसेस और दोज हु अटैच टू सेंसेस और दोज हु वर्शिप देयर ईगो, इन दोनों में क्या क्या फर्क हो रहा है और कितना शटल बारीक की डिफरेंसेस हैं, जिसे हम अगर अपने अंदर वो अवेयरनेस लाए तो हम केयरफुल रहें कि हमारे अच्छे काम आगे जाकर कहीं हमें बुरे रिजल्ट ना देने लग जाएं। अगर हम जान जाएं विल बी टेक केयर ऑफ इट। इसीलिए इंद्रियों के पीछे पड़ने वालों से ज्यादा खतरनाक दुख भोगने वाले होते हैं जो ईगो के पीछे पड़ते हैं। रेस्ट ऑफ थिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति।
आदरणीय आचार्य जी,
सबको सादर अभिवादन, नमस्कार।
नमस्ते।